ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தீன் ஹோ கே, தீன், ஏக் ஈஸ்வர் ஹுவா, ஏக் ஜீவ் ஹுவா, ஔர் ஏக் யே ஜகத் ஹுவா. அபி தீன் ஜிஸ்கே ஆசிரித் ரஹே ஹேன், சாச்சா 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 தானி ஐசே கஹ தேதே ஹேன், யா யத்தே தஸ் பாவா இஸி தத்துவம். தோ யே தீனோ கே தீனோ ஜிஸ்மே ரஹ ரஹே ஹேன், ஜிஸ்கே ஆசிரித் ஹே வோ தத்துவ ஹே. மோட்டா சா உதாரண, ஜெய்ச கடா ஹை, கடா கா தத்துவ கியா ஹை, மிட்டி ஹை. ஜெய்ச சோனே கி ஜஞ்சீர் ஹை, உஸ்கா தத்துவ கியா ஹை, சோனா ஹை. தோ யே ஜோ சோனே கி ஜஞ்சீர் ஹை, ஜோ மிட்டி மே கடா ஹை, யே தோ ஜூடே ஹை. அரே ஜூடே நா ஹோதே தோ யே பிகட்தே ஹி நஹீ, சோனா நஹீ பிகட்தா ஹை. இஸ்லே பாகவத்கார நே எக் பாத் கஹி ஹே கி யதா ஹிரண்யம் சுக்ருதம் புரஸ்தாத் பஷ்சாத் சர்வஸ் ஹிரண்மயஸ்யா ததேவ மத்யே வ்யவஹாரமாணம் நானாபதேசை ரஹமஸ் ததவத். யதா ஹிரண்யம் சுக்ருதம் புரஸ்தாத், ஜெய்சே பஹலே ஸ்வர்ண ஹே, ஸ்வர்ண ஃபிரே उसको बना दिया गया क्या आभूषण, और फिर तोड़ दिया गया तो क्या हो गया सोना. तो पहले भी सोना था और जब जंजीर बन गई तब भी सोना ही रहा उसमें. जंजीर नहीं है उसमें. தத்துவத்தா தோ சோனா ஹை ந ஜஞ்சீர் மே. ஜஞ்சீர் தோ ஜூடி ஹை ந, ஜஞ்சீர் தோ மித்யா ஹை. ஜஞ்சீர் கி ஆக்ருதி தோ ஆப்னே தி ஹை, ஜஞ்சீர் கா நாம் பி தோ ஆபே தியா ஹை. சோனா பஹலே தா, சோனா பாத் மே ரஹேகா. ததேவ மத்யே வ்யவஹாரமாணம், வ்யவஹார மே ஜப் ஆ ரஹா ஹை வோ சோனா, தபி வோ சோனா ஹி ஹை. जो आदि में रहता है, जो अंत में रहता है, वही मध्य में रहता है. मध्य में कोई दूसरी वस्तु नहीं होती ही, इसी को तत्व कहते हैं. तो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या तत्व से उस शिष्य के लिए कहता है. कौन सा शिष्य? जिस शिष्य के जीवन में समदम ऊपर तिरिच्छा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग सटक संपत्ति और मुमुक्षा, ये जिसमें विद्यमान है. यदि ये न होगा तो ब्रह्म विद्या का प्रभाव उसके जीवन में नहीं हो सकेगा. यदि विक्षिप्त होगा, यदि उसके जीवन में दुनिया का राग होगा, यदि दुनिया में ही वह सुख ढूंढ रहा होगा, विवेक उत्पन्न नहीं हुआ होगा. विवेक होना चाहिए पहले. अभी हम क्या करते हैं? अभी हम दुनिया में ही तो सार ढूंढ रहे हैं. हमको लगता है ये वस्तु मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, ये वस्तु मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, ये पद मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे. और सुखी सब कुछ पाकर के भी व्यक्ति नहीं होता, अशांत रहता है. तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, कहां सुख ढूंढ रहे हैं, कहां परमात्मा को ढूंढ रहे हैं. आप परमात्मा ढूंढ रहे हो, सुख नहीं ढूंढ रहे हो. सब के सब आप नहीं, चींटी पर्यंत, चींटी से लेकर ब्रह्म पर्यंत सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं. सब परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं. चींटी भी परमात्मा की भक्त है, चींटी भी परमात्मा ही चाहती है. आप ही जिज्ञासु नहीं है, चींटी भी जिज्ञासु है. अच्छा ये बताओ, चींटी अपने अस्तित्व को चाहती है कि नहीं? अस्तित्व माने अपना बनी रहना चाहती है. चींटी बनी रहना चाहती है कि नहीं? तो सत्य के प्रति प्रेम हुआ कि नहीं? उसके नहीं हुआ. आप अपने हाथ में लो लो, ले लो चींटी को, या चिड़िया आपको देख ले तो जैसे आप बाघ को देख कर डर जाते हैं, चिड़िया भी इसी प्रकार से आपको देख कर डर जाती है। तो ऐसी संसार में कौन से ऐसे जीव हैं जो अपने अस्तित्व के प्रति प्रेम ना रखते हों? अब अस्तित्व के प्रति प्रेम ही परमात्मा के प्रति प्रेम है, पर वो ये नहीं जानते हैं कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो परमात्मा है। वो कहाँ है, कैसे है, वो सिर्फ आदमी ही जानेगा, मनुष्य ही जानेगा। ये योग्यता पशुओं में पक्षियों में नहीं है कि वो परमात्मा के अस्तित्व को प्रत्यक्ष अनुमान आगम से समझ सके। समझेगा तो सिर्फ ये ग्रंथ लिखा गया है, सिर्फ ये ब्रह्म विद्या सिर्फ उसके लिए, किसके लिए, जो विवेक सिक्त हो। चींटी कभी चींटी के जीवन में विवेक नहीं हो सकता है। अच्छा देखिए एक और, चींटी अपने अस्तित्व के प्रति प्रेम रखती है, सुख नहीं चाहती है, वो सुख है चाहती है कि नहीं? तभी तो आपकी चीनी में घुस जाती है, वो दीवार में टंगी होती है, वो ढूंढ रही है सुख, वो सुख में पहुंच गई, सुख की खोज कर रही है, सुख की तलाश है। तो सुख तो परमात्मा में है, सुख तो और कहीं है नहीं। कोई भी व्यक्ति कहीं किसी वस्तु में सुख सिद्ध नहीं कर सकता, ना किसी संत का अनुभव है, ना कोई शास्त्र है, और ना कोई युक्ति है इसमें कि परमात्मा के अतिरिक्त और भी कहीं सुख है। अब आपकी भ्रांति की बलिहारी, उसको क्या किया जाए जो शास्त्र की ही बात आप नहीं सुनते। सुख परमात्मा में है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ कहीं सुख नहीं है। वो सुख चाहती है, इसका मतलब है कि वो सुख चाहती है तो परमात्मा चाहती है। भले ही उसको ये मालूम नहीं है कि सुख यहां नहीं है, आपको विवेक हो गया, आपको वैराग उत्पन्न हो गया, आप समझ गए इस बात को कि सुख दुनिया में नहीं है, परिच्छ लोक कर्म चितान लोकान। आपने विवेक किया, आपके जीवन में विवेक है, आपने विवेक से समझ लिया कि सुख यहां नहीं है। देखिए एक आप कि यदि सुख है कहीं तो परमात्मा में है। यदि कहो कि नहीं बाबा हमें गुलाब जामुन भी मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है, सुख मालूम पड़ता है। सुख तो है क्योंकि परमात्मा व्यापक है, तो गुलाब जामुन में सुख नहीं होगा, लेकिन गुलाब जामुन में नहीं है, उसमें परमात्मा रह रहा है। अच्छा एक उदाहरण देखिए कि जैसे जैसे आग के संबंध में जल गर्म होता है, आग का संबंध मना दिया जाए तो जल गर्म हो जाएगा कि नहीं? गर्म हो जाएगा। तो जल में गर्मी होती है, नहीं होती है? बहुत अच्छा, जल का स्वरूप गर्म नहीं है, जल की प्रकृति गर्म नहीं, शीतल है। जल में शीतलता रहती है, मधुरिमा रहती है, पर उसमें जो गर्मी मालूम पड़ती है वो उधार है कि नहीं? उसमें उधार का मतलब सातिशय सोपाधिक अनित्य गर्मी है। सातिशय का मतलब होता है कि किसी के संबंध से हुई गर्मी मालूम पड़ रही है। सोपाधिक का मतलब है किसी से जुड़ गया था वो जल, इसलिए गर्मी मालूम पड़ रही है। अनित्य का मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए ही मालूम पड़ती है, क्योंकि उसका स्वरूप ही नहीं गर्म, तो थोड़ी देर तो गर्म रहेगा जल। गर्मी है नित्य निरत से निरुपाधिक गर्मी, आग में है, नित्य है, नित्य है आग में गर्मी, नित्य है। चाहे वो समुद्र में ही क्यों न डाल दी जावे, वो तो नित्य है, निरतिशय है। निरतिशय का मतलब होता है कि उसमें किसी के संयोग से गर्मी नहीं उत्पन्न हुई है, उसमें किसी के संयोग से बढ़ोतरी गर्मी की नहीं हुई है, निरतिशय आग गर्म है। ठीक इसी प्रकार से निरुपाधिक है, उपाधि से गर्मी नहीं है, किसमें, आग में। तो जैसे नित्य निरतिशय निरुपाधिक गर्मी आग में है, अनित्य सातिशय सोपाधिक गर्मी जल में है, इसी प्रकार से नित्य निरातिशय निरुपाधिक सुख परमात्मा में है, परमात्मा में है। और कहीं यदि मालूम पड़ती है तो परमात्मा के संयोग से मालूम पड़ता है। सुख मालूम पड़े, चाहे सत्ता मालूम पड़े और चाहे चित्ता मालूम पड़े, बाबा ये शरीर को भी तो आप कहते हुए, देखो हम जानते हैं, जब आप कहोगे ना हम जानते हैं तो ये शरीर को संकेत करते हुए हम जानते हैं, नहीं ये शरीर में जानकारी नहीं है। तो चींटी भी परमात्मा से प्रेम करती है, पर चींटी में विवेक नहीं हो सकता है, परिच्छलोकान कर्म चितान ये नहीं हो सकता है, उसको निर्वेद नहीं हो सकता है। पर वो अस्तित्व के प्रति प्रेम रखती है, सुख के प्रति प्रेम रखती है, चित्ता के प्रति प्रेम रखती है। एक और बताऊं आपको आश्चर्य की बात, वैज्ञानिक बोलते हैं जो केमिकल बनाते हैं और खेतों में डालते हैं, ये लोग बोलते हैं कि अब ऐसे आवरण कीड़ों ने अपने आसपास सृजन कर लिया है, पैदा कर लिया है कि जो दवा पहले काम करती थी वो अब नहीं काम कर रही है। तो ज्ञान का विकास नाक आदि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वो भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये मंत्र हुआ। आप देखिए वो अक्षर तत्व जिसको पुरुष कहा है, जिसे सत कहा है, जो ब्रह्म विद्या के द्वारा जाना जाता है, वो उसका वर्णन करते हैं इसमें, इस मंत्र में। अब दूसरा खंड शुरू होता है मुंडक का। अब एक बात पहले समझ लीजिए कि परमात्मा को कोई ये नहीं कह सकता कि ये परमात्मा है, बस सिर्फ विचार ग्राही है, वो समझ प्रयत्न करो तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके जीवन में समदम उपर तितिक्षा श्रद्धा समाधान है। देखो आप यहां तितिक्षा कर रहे हो, डल्लभ के गद्दे छोड़ करके, लेटना छोड़ करके आप यहां कुर्सी में बैठे हुए सीधी सीढ़ी करके, तितिक्षा हुई कि नहीं? चित्त है आपका एकाग्र है, श्रद्धा साथ में है, सम्मन में है, इंद्रियों का निग्रह करके सुन रहे हैं, कान आदि को श्रवण में लगा रखा है। तो इस प्रकार से युक्त व्यक्ति के जीवन में जब श्रुति संकेत करती, सिर्फ संकेत करेगी, तो परमात्मा के संबंध में अगला जो खंड है, दूसरा जो मुंडक है, इस दूसरे मुंडक में पहला मंत्र है, उस मंत्र में परमात्मा को जानने के लिए देखो किस प्रकार से बोलती है श्रुति। तो तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्चैवापि यन्ति। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात्। देखो अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि जब प्रज्वलित होती है, जब लकड़ी उसमें डालते हैं और लकड़ी में जब आग लगा देते हैं तो चिंगारियां उठती हैं। देखिए चिंगारियां उठती हैं और वो चिंगारियां अलग अलग होती हैं। एक बड़ी हुई अग्नि है, ज्वाला है, उसमें विविध प्रकार की चिंगारियां उठती हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई अभी शांत हुई, कोई थोड़ी देर में शांत होती है। तो जैसे आग से चिंगारियां उठती हैं और फिर वो चिंगारियां उठ करके फिर आग में ही हो जाती हैं। चिंगारियां अलग क्यों हैं? चिंगारियों में अलग इसलिए वो प्रतीत हो रही हैं कि उसमें थोड़ी से लकड़ी का अंश है। लकड़ी के छोटे छोटे कणों के साथ चिंगारियां अलग अलग मालूम पड़ेंगी। यदि लकड़ी के छोटे कण चिंगारियों के साथ नहीं होंगे तो चिंगारी तो अपने स्वरूप में रहेगी, वो तो हो ही नहीं सकती। अलग जो भेद की प्रतीति हो रही है वह किसी कारण से होती है, लेकिन उत्पन्न वह अपने मूल से ही हुई है। पर भेद की जो प्रतीति हो रही है वह उपाधि के कारण प्रतीत हो रही है। अच्छा आपसे यदि कोई कहे कि आप थोड़ी से हमको अग्नि दे दो, तो ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति हो सकता है क्या जो सिर्फ अग्नि को लादे हुए? बाबा देखो माताएं तो फिर भी हां बोल देती हैं, आप सो रहे हो कि समझ रहे हो? एक बार मैं शिव पुराण की कथा कर रहा था आश्रम में, तो बच्चे वहां बैठे थे, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो मैंने कहा कि सो रहे हो? बोले नहीं। और सो रहे थे। थोड़ी देर में मैंने कहा कि सुन रहे हो? बोले नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो आप? सिर्फ आग कोई ला देगा, सिर्फ आग। आग लाओगे तो लकड़ी के साथ ही ला सकोगे, या लोहे में लोहा को डाल दो तो गर्म हो जाएगा तो लोहे के साथ आ जाएगी, चिमटा में दबा के ले आओगे, या माचिस के साथ आ जाएगी चिंगारी। लेकिन केवल कोई आग नहीं ला सकता है। बताए कोई ला सकता हो तो हमें बता दे। सिर्फ आग लाना है, आग के साथ और कोई उपाधि जुड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। पर ये आग की जो पृथक पृथक प्रतीति होती है वह सिर्फ उपाधि के कारण होती है। आग है लकड़ी के छोटे छोटे कणों के साथ, जब कण भस्म हो जाते हैं चिंगारी से, तो चिंगारी अपने स्वरूप में गायब नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं गायब हो जाएगी? कि किसी का अस्तित्व मिटता नहीं है। सागर से उठने वाली तरंग हैं, वो सागर में लीन हो जाएंगी। वायु के कारण वो तरंगें उठती हैं और जिससे उठी हैं उसी में लीन होंगी। नियम है, हर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को लौट करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो आग फिर वो चिंगारी फिर अपने स्वरूप में हो जाएंगी। तो ये बोलते हैं कि सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः। वो स्वरूप ही होते हैं, वो आग की चिंगारियां आग की स्वरूप ही होती हैं, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे आग की चिंगारियां आग से उठ करके उपाधि को धारण करके भेद को प्राप्त होती हैं और फिर अपने स्वरूप में भेद के कारण को मिटने के बाद अपने स्वरूप में स्थित हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से तथा छला विविधा सौम्य भावाः। हे सौम्य, ये जो उपदेश दे रहे हैं, ये जो उपदेश दे रहे हैं सौनक को अंग्रेज, तो उनको सौम बोलते हैं कि चंद्रमा के समान तुम शीतल हो। बाबा गुरुदेव को ठंडी लग रही थी क्या शिष्य के पास, शिष्य को पास आने से? ठंडी नहीं लग रही थी। तो चंद्रमा ठंडा होता है, सौमक सौम माने चंद्रमा ही तो होता है, और यहां सौम्य है। तो जिसके बोलने से शीतलता प्रतीत हो, जिसकी क्रिया उग्र न हो, जिसकी मुद्रा बिल्कुल सौम हो जी, इसलिए तो गुरुदेव को ये शिष्य बहुत अच्छा लगा। तो उदाहरण देते हैं, सौम है, सौम के समान शांत और शीतल। इसी प्रकार से जैसे आग से विविध प्रकार की ये चिंगारियां उठती हैं और फिर उपाधि के विनष्ट होने पर अपने स्वरूप में स्थित हो जाती हैं, तो ये इसी अक्षर से, इसी पुरुष से, इसी सत से विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। बाबा तो जो सत से चिंगारी उठेगी, ये तो आग की चिंगारी का दृष्टांत है, दृष्टांत समझने के लिए होता है। तो जो सत से उठेगी चिंगारी तो हमें तो मालूम होना चाहिए। जी हां, मालूम तो होगा, क्योंकि ये वो भी आग है, ये भी आग है। अरे परमात्मा भी आग है जी, ज्ञान आग्नि दद्ध कर्माणि है ना, ज्ञान है ना, परमात्मा ज्ञान रूप है, ज्ञान आग्नि दद्ध कर्माणि, ज्ञान की भी अग्नि है, ज्ञान भी अग्नि है। तो इस ज्ञान रूप अग्नि से विस्फुलंगा कहां उत्पन्न हुए? आपके अंदर जो अहम महम महम ये हो रहा है ना, ये चिंगारी है। लेकिन आप ये चिंगारी को समझ लीजिए कि ये चिंगारी उपाधि के साथ है, निरुपाधिक नहीं है। एक दिन और आपसे निवेदन किया था कि ये जो अहम अहम हो रहा है तो ये एक ही है, तो ये चाहे वो वर्ण में हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे वो लिंग में हो, चाहे वो देश में हो। अरे भाई, लिंग माने मैं स्त्री हूं, मैं संध हूं, मैं पुरुष हूं, मैं है ना मैं, और फिर मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, तो मैं है। मैं अमुक वर्ण का हूं, मैं अमुक आश्रम का हूं, मैं अमुक जाति का हूं, ये मैं है ना, ये विश्वलिंगा है। इसी को चिदाभास कहते हैं, ये किसी का आभास पड़ रहा है इसमें। तो इतना समझ लीजिए कि अहम अहम जो उठ रही है, ये चिंगारियां हैं, ये अंतःकरण के जो छिद्र है ना, अंतःकरण के जो छेद हैं। भगवान शंकराचार्य यही उदाहरण देते हैं कि अंतःकरण में जो आभास पड़ता है ना, या यूं कहिए कि आभास नहीं, सीधा जो, क्योंकि वो व्यापक होने के कारण अंतःकरण में जो छिद्र है, अरे हमारी आंख में छेद है, हमारी नाक में छेद है, हमारे नस नाड़ियों में छेद है, जहां से रक्त बहता है, जहां से हवा चलती है सारी नस नाड़ियों में। यदि हवा आकाश दो होगी तो हवा कैसे बहेगी, अंदर बह रही हवा, अंदर रक्त चल रहा है तो छेद नहीं होगा, तो छेद होगा। तो ये जो हमारा अहम है, अहम 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 जो विस्फुलिंगा उठ रहा है ना, सत से अच्छा से उठा हुआ है, तो ये उपाधि में जो आया हुआ है, ये यही सत है, यही पुरुष है, यही अक्षर है। उपाधि को मिटा देने के बाद, जैसे चिंगारी, आग की चिंगारी उपाधि को, लकड़ी के कण को मिटा देकर अपने स्वरूप में हो जाती है, इसी प्रकार जो अहम अहम स्थूल हो रही है, ये जो उपाधि है आपकी, जो उपाधि है, इसको उपाधि के विनष्ट हो जाने पर वो स्वयं अपने स्वरूप में हो जाएगा। तो ये जो अहम 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 हो रहा है, ये ही चिंगारी है जी, और ये चिंगारियों ने ये सारी उपाधियों को धारण कर रखा है, ये सारी उपाधि है। अच्छा, जब मैं नहीं होता है तो क्या हो जाता है, राम राम सत्य हो जाता है। आदमी मरने के बाद राम राम सत्य बोलता है, जिंदे में थोड़ी कहता है, जिंदे में तो बोलता है कि ये गांधी जी सत्य हैं, जिंदे में बोलता है कि ये भोग सत्य हैं, ये पद सत्य है, ये कुर्सी सत्य है, ये प्रतिष्ठा सत्य है। लेकिन जब आदमी का प्राण चला जाता है तो बोलते हैं राम राम सत्य है। तथा अक्षराद विविधा सौम्य भाव प्रजायन्ते तत्र प्रजायन्ते, उसी सत से, उसी अक्षर से ये उत्पन्न होते हैं और उसी में फिर विलीन हो जाते हैं, कि जो वस्तु जहां से उत्पन्न होगी वह उसी में विलीन होगी। तो देखिए, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जैसे एक और उदाहरण देते हैं, यहां तो सिर्फ आका ही दिया है, पर भाष्य में किसी प्रकार से व्यक्ति को समझ में आ जाए। वो बोलते हैं कि जैसे घड़ा है, घड़ा है ये देखो, ये मठ आकाश है, तो इस मठ आकाश में आपने आकाश को बनाया, आकाश बना नहीं बनाया, केवल उपाधि बना दी है, मैंने दीवाल बना दिया है। इसी प्रकार से घड़े में जो आकाश है, घड़े का आकाश बनाया नहीं है, वो तो बना बनाया, वो तो पहले से ही है, वो तो विद्यमान ही है, उपाधि हमने बढ़ा दिया। तो आपको संक्षेप में बताई देता हूं कि वो घड़ा आकाश, घटक की उपाधि जो है, ये मठ की जो उपाधि है, ये उपाधि से भिन्नता प्रतीत होती है घट के निवृत्त होने पर, मठ के निवृत्त होने पर एक ही महाकाश सिद्ध होता है। अब अगला प्रसंग आपकी सेवा में, कल समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।